नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। श्री शाह उत्तर 24 परगना के दमदम और हावड़ा तथा हुगली के सप्तग्राम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तथा सोनारपुर में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु में एक ही चरण और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का विधानसभा चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कुलटी और सिलीगुड़ी में रैलियां की। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक जनसभा की। कांग्रेस, वामपंथी और अन्य दलों ने भी राज्यभर में प्रचार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल 16 जिलों की 152 सीट पर होगा। इस चरण में 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस बीच तमिलनाडु में मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष विराम बढ़ा रहा है। 2 सप्ताह का संघर्ष विराम आज समाप्त होने वाला था। श्री ट्रंप ने कहा है कि इस दौरान अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक बातचीत समाप्त नहीं हो जाती। राष्ट्रपति ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब ईरान आगे की बातचीत से मना कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान से भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है। जर्मनी की 3 दिन की यात्रा के पहले दिन रक्षा और सुरक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है और तकनीकी परिवर्तन ने स्थिति को बेहद जटिल बना दिया है। रक्षा मंत्री ने भारत और जर्मनी के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस बीच सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर कल नई दिल्ली में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कल ब्रिटेन के रक्षा उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात कर रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर आर्थिक एकीकरण से रक्षा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सहयोग संभव होगा। उन्होंने बताया कि रक्षा औद्योगिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनियना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी परिचालन तैनाती का 3रा पड़ाव है। आईओएस सागर पहल के अंतर्गत तैनात इस अपतटीय गश्त पोस्ट पर 16 मित्र देशों के बहुराष्ट्रीय दल सवार हैं। जकार्ता में प्रवास के दौरान जहाज इंडोनेशियाई नौसेना के साथ पेशेवर, सामाजिक और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेगा। इसकी इंडोनेशियाई नौसेना के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज निर्धारित है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। सेना ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। त्रिशूर जिले के मुंथार्थीकोड में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इस क्षेत्र में हुई यह सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है। ये दुर्घटना रविवार को तमिलनाडु के विरुधनगर में एक पटाखा कारखाने में विस्फोट के 2 दिन बाद हुई। इसमें 25 लोग मारे गए थे। थिरुवम्बंडी देवस्वम के लिए आतिशबाजी तैयार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने कल दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।